नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शुक्रवार को बताया कि एलन मस्क ने इतिहास में व्यक्तिगत संपत्ति के सबसे बड़े नुकसान का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। एक ब्लॉग पोस्ट में GWR ने फोर्ब्स के अनुमान का हवाला दिया कि एलन मस्क को नवंबर 2021 से लगभग $182 बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी अब मस्क का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। लेकिन अन्य स्रोतों से पता चलता है कि ये आंकड़ा $200 बिलियन के करीब है। GWR ने अपने ब्लॉग में लिखा है, सटीक आंकड़े का पता लगाना लगभग असंभव है। एलन मस्क का कुल घाटा वर्ष 2000 में जापानी टेक निवेशक मासायोशी सोन द्वारा निर्धारित $58.6 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की नेटवर्थ नवंबर 2021 में $320 बिलियन से गिरकर जनवरी 2023 में $137 बिलियन हो गई। मस्क की संपत्ति में गिरावट का मुख्य कारण टेस्ला के स्टॉक का खराब प्रदर्शन है। मस्क ने $7 बिलियन के टेस्ला के स्टॉक बेचे हैं क्योंकि वह नवंबर में ट्विटर खरीदने के लिए फाइनेंस की कोशिश में थे। पिछले महीने उन्होंने $3.58 बिलियन के स्टॉक बेचे थे। अप्रैल से अब तक उन्होंने कुल $23 बिलियन से अधिक के स्टॉक बेचे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला और बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की बढ़त के साथ 81.61 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट की वजह से रुपए की बढ़त सीमित रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.73 पर खुला, फिर कुछ और बढ़त के साथ 81.61 पर आ गया, जो पिछले मंद भाव के मुकाबले 13 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। रुपया मंगलवार को 81.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08% बढ़कर 103.31 पर आ गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.71% गिरकर $79.53 प्रति बैरल के भाव पर था। विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयर में गिरावट के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट रही। एक दिन पहले भी शेयर बाजारों में कमजोरी का रुख रहा था। इस दौरान BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक 309.7 अंक टूटकर 59,805.78 अंक पर आ गया। व्यापक NSE निफ्टी 89.8 अंक की गिरावट के साथ 17,824.35 अंक पर था। सेंसेक्स में भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्फ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और इंडसइंड बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर टाटा मोटर्स, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और ICICI बैंक के शेयरों में तेजी रही। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग के बाजारों में तेजी रही। अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र में मंगलवार को 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 631.83 अंक यानी 1.04% लुढ़क कर 60,115.48 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 187.05 अंक टूटकर 17,914.15 अंक पर बंद हुआ था। देश में विनिर्मित टेलीविजन TV की बिक्री जुलाई सितंबर 2022 की तिमाही में इससे पिछले तिमाही की तुलना में 33% बढ़कर 50 लाख इकाई के पार पहुंच गई। बाजार शोध कंपनी काउंटर पाउंड रिसर्च ने मंगलवार को ये जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार स्तर पर विनिर्माण के मामले में पहनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की श्रेणी में सबसे आगे ट्रू वायरलेस स्टीरियो TWS है, जिसकी कुल बिक्री के लगभग 37% उत्पादन भारत में हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तीसरी तिमाही में भारत निर्मित टीवी की बिक्री में 33% की वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी में लगभग 50 लाख इकाइयों की बिक्री हुई। भारत में निर्मित वियरेबल उपकरणों की श्रेणी में 37% बिक्री के साथ TWS सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय विनिर्माण के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा ऑप्टिमस सबसे आगे है। इसका कुल बिक्री में हिस्सा 90% से ज्यादा है। भारत, FIH, पेजेट, आविष्करण और ऑप्टिमस शीर्ष 4 ब्रांड हैं और TWS श्रेणी में बिक्री के मामले में संयुक्त रूप से इनका योगदान लगभग 90% है। टैबलेट श्रेणी में सैमसंग, डिक्सन, विंगटेक स्थानीय विनिर्माण वाले उत्पादों की बिक्री में 90% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं। बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को कंपनी बॉन्ड सूचकांकों को लेकर वायदा अनुबंध शुरू करने की अनुमति दे दी। इस पहल का मकसद बॉन्ड बाजार में नकदी बढ़ाना और निवेशकों को निवेश को लेकर जोखिम से बचाव के उपाय उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने परिपत्र में कहा कि सूचकांक में कंपनी ऋण प्रतिभूतियां होनी चाहिए। सूचकांक में शामिल प्रतिभूतियों को लेकर जारीकर्ता के स्तर पर पर्याप्त नकदी और विविधीकरण होना चाहिए। सूचकांक में शामिल प्रतिभूतियों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अलावा निर्गम जारी करने वालों का सूचकांक में 15% से अधिक भारांश नहीं होना चाहिए। सूचकांक में कम से कम 8 निर्गम जारीकर्ता होने चाहिए और जारीकर्ताओं के एक विशेष समूह का सूचकांक में 25% से अधिक भारांश नहीं होना चाहिए। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक वित्तीय संस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कहा, नकद निपटान वायदा कंपनी बॉन्ड सूचकांक CBIF अनुबंधों का मूल्य पेशकश के समय 2,00,000 रुपए से कम नहीं होगा। शेयर बाजार 3 साल तक अवधि के लिए अनुबंध पेश कर सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।